मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं मुख्य विषय की घोषणा पहले से नहीं कर रहा हूं, देखते हैं कि हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं और इसके बाद इसके बारे में बातें करेंगे। फिलहाल जो छोटी छोटी दो खबरें हैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं और इस भावना के साथ तैयारी कर रहे हैं कि मुझे तो सेलेक्ट होना ही है, तो दोस्तों आपको चीजों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। चीजों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब है कि चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं। सवाल ये नहीं है इतना ज्यादा कि उनमें से कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो तो महत्वपूर्ण है ही, और जहां तक मैं समझ पाया हूं अभी तक कि जिनके अंदर तैयारी की थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है या थोड़ी सी भी दृष्टि है, वो बड़े आराम से समझ भी लेते हैं कि नहीं, एग्जामिनेशन के लिए ये जो घटना है या ये जो खबर है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप ये है कि घटनाएं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नोन है, मतलब चर्चा में है, अखबारों में आई है, लोग उन पर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। यानी कि घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होने के बावजूद आप उन्हें महत्वपूर्ण बना देते हैं। और ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आप उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मालूम है कि कतर में विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सामान्य तौर पर आपको लगेगा कि यह जो घटना है यह तो स्पोर्ट्स की घटना है, और बिल्कुल सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा, स्पोर्ट्स की घटना है, विश्व की एक महत्वपूर्ण खेल की घटना है। तो अब आप इसे केवल खेल के रूप में देख सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया गया तो आप उसका उत्तर दे देंगे, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, छूट गया। लेकिन क्या सच में ये यहीं तक सीमित है, या कि इस घटना के और भी डाइमेंशंस हैं? क्या दूसरे आयाम भी हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं? और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो एग्जामिनर पर इसका बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कुछ समय से इस घटना के बारे में पढ़ रहे होंगे, कतर में जो विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, इस घटना के बारे में, तो आपको पढ़ने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से कतर में टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब जितनी उम्मीद की जा रही थी कि इतने दर्शक इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचेंगे, अब लग रहा है कि उससे दुगुने दर्शक पहुंचेंगे। और कतर के आसपास के जो दूसरे देश हैं वहां भी लोगों का जमावड़ा हो गया है, यानी जो कोई फुटबॉल प्रेमी है वहां आकर के रह रहे हैं, और वहां बहुत छोटे छोटे देश हैं, एकदम आसपास ही आसपास में हैं, तो लोग वहां से यहां आ जाते हैं। और कतर ने इसके लिए खूब मेहनत की, आप देखिए कि वीजा फ्री कर दिया है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं की हैं, सिक्योरिटी को बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, यहां तक कि उसने बहुत से अपने जो इस्लामिक सिद्धांत होते हैं उन तक को फिलहाल छोड़ सा दिया है, उनमें नरमी दिखाई है, उसमें उदारता दिखाई है। और उसमें उदारता दिखाई है तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत से फुटबॉल प्रेमी अब वहां विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता देखने आ रहे हैं। टूरिज्म, क्या सच में इसका इस्तेमाल हम टूरिज्म के लिए नहीं कर सकते? मान लीजिए कि टूरिज्म पर आपको निबंध लिखना है या कोई उत्तर लिखना है, तो आप कतर के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह के इवेंट्स का भी टूरिज्म हो सकता है। और अब तो चलिए हर साल कतर में नहीं होगा, होता भी नहीं है, चार साल में प्रतियोगिता होगी, जितने साल में भी होती हो कतर को तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन एक यदि प्रवाह बन गया तो वो प्रवाह फिर लगातार जारी रहता है। तो अब आप देखिए कि एक टूरिज्म का हो गया, दूसरा मैंने अभी उदारता की बात कही, नियमों में ढिलाई दी गई है, तो जब आप एक लिबरल एप्टीट्यूड लेकर के चलते हैं, लिबरल माहौल बनाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों का आकर्षण उसके प्रति बढ़ता है। यानी कि रिजिडिटी में आप इस तरह का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये एक और भी तथ्य आ गया। तो दोस्तों इसी बात को मैंने कहा कि आप एक ही चीज पढ़ रहे हैं केवल, लेकिन उसका इस्तेमाल एक आलू की तरह जो कि कई सब्जियों में डाल करके इस्तेमाल किया जा सकता है बना सकते हैं, स्वाद बदल जाएगा, डिशेस की संख्या बढ़ जाएंगी, केवल एक वजह से कि आप उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। छोटी सी खबर आज मैंने अखबार में पढ़ी, और मैं सच पूछे तो इस खबर को पढ़ने के बाद थोड़ा चौंक गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि नहीं, ये भी आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए। जर्मनी और स्पेन ने मालूम है क्या शुरू किया है? हम अक्सर कहते हैं कि हम वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को स्वीकार करते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने देश के बारे में ये बातें कहते हैं, और आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आश्चर्य हो कि जो हमारे यूरोप के देश हैं वो भी लगभग इसी संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि उनके जो नौजवान लोग हैं वे अपनी संस्कृति से विमुख होते चले जा रहे हैं। तो सवाल यह कि यदि वे अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं तो फिर किसकी संस्कृति को पकड़ रहे हैं? क्या एशियाई संस्कृति के निकट आ रहे हैं, या और कुछ एक नई संस्कृति किसी दूसरे ग्रह से आ गई है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या हो रहा है, या अपसंस्कृति की ही संस्कृति विकसित हो रही है? वी डोंट नो। जर्मनी और स्पेन ने, आप सोच करके देखिए कि अपने यहां के युवाओं को कल्चर बोनस देना शुरू किया है। कल्चर बोनस देने का मतलब है कि आपको एक साल में, दो साल में 30,000-40,000 रुपए दिया जाएगा। मैं आंकड़े अब समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये जो पैसा है आप इसका इस्तेमाल संस्कृति को समझने के लिए करेंगे। कैसे समझेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? इतिहास और संस्कृति से संबंधित किताबें पढ़ेंगे, उससे संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगे, तो वहां तो हर चीज का टिकट लगता है, तो वहां आप जा सकेंगे। संस्कृति संबंधी कोई कोर्स हो रहा है, पाठ्यक्रम हो रहा है, तो आप उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, इस तरह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां जो खर्चा होगा उसमें आप इस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी संस्कृति के संपर्क में आ सकें, उसे देख सकें, उसे जान सकें, और जब ऐसा सब होगा तो आप थोड़ा सा उसे अपना भी सकेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सच में ये एक मजेदार खबर है? है ना मजेदार खबर, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। तो खासकर दो बातें मैंने अभी इस संदर्भ में आपके सामने रखी हैं। एक छोटी सी खबर है और वो ये है कि इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है वहां कल एक जबरदस्त ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। सेमेरू ज्वालामुखी, याद रखिए, ये सेमेरू ज्वालामुखी है, जबरदस्त विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उस पर। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और भूकंप और ज्वालामुखी तो जानते हैं आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुख्य परीक्षा में, तो खासकर एक न एक प्रश्न इससे आ ही जाता है। तो ये आपका अपडेट हो गया, अगर ज्वालामुखी पर कोई प्रश्न पूछा जाता है मेंस में तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, और अगर प्री में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रधानमंत्री जी का एक लेख दिया था अपने प्रेस क्लिपिंग्स में, जो उन्होंने G20 की अध्यक्षता के रूप में वो क्या करेंगे, हमारा देश क्या करेगा, इस पर लेख था, और बहुत अच्छा लेख था, बहुत ही सुचिंतित तरीके से लिखा गया था और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड भी था। यानी कि केवल थॉट्स ही बहुत अच्छे थे बल्कि जिस तरीके से उसका ढांचा था वो भी बहुत अच्छा था। उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह के लेखों को अच्छा माना जाता है, उसका एक अच्छा नमूना इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को अपने पास रखें और इसे इस रूप में भी पढ़ें कि अच्छा ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल है, सर ने कहा है, तो जरा सा हम ढूंढें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। इसमें मैंने आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जो आखिरी के एक दो पैराग्राफ हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हम क्या करने जाएंगे, और उसमें आपको भारत की जो विदेश नीति अभी तक चली आ रही है वो भी झलकती हुई दिखाई देगी, और आगे की जो विदेश नीति हमारी होगी वो भी झलकती हुई दिखाई देगी, और उन सब में आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी। यानी कि विदेश नीति के मामले में भारत बिल्कुल अपनी उसी परंपरा को लेकर के चल रहा है जो आज से नहीं बल्कि कहीं सम्राट अशोक वगैरह के काल से चल रही होगी, उस परंपरा को लेकर। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरी इस सलाह का कितना पालन किया है, और डेफिनेटली अगर आपको मुझ पर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से आपने उसका पालन किया होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने पालन किया होगा तो मान करके चलिए कि आपने वक्त का सही उपयोग किया है। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पूरे देखिए पूरा आर्टिकल कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, चाहे कोई भी आर्टिकल हो उसके कुछ हिस्से महत्वपूर्ण होते हैं और आपका ध्यान उन हिस्सों पर होना ही चाहिए। तरीका यह होता है कि आप पूरे आर्टिकल को पढ़िए, हिस्सों को ढूंढने के लिए तो आपको आर्टिकल की यात्रा करनी पड़ेगी तभी आप मुख्य हिस्से तक पहुंच पाएंगे। एक बार आप पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, इसके बाद आप फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो पहले बार में आपको पता लग जाता है कि अच्छा इस तरह का आर्टिकल था। अब दोबारा आप उन हिस्सों की तलाश के लिए पढ़ते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, अब दोबारा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उन्हें अंडरलाइन भी करते चलिए, या पहली बार में ही अंडरलाइन कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अब या तो आप इस आर्टिकल को अपने पास रखना चाहते हैं, आपने एक फाइल बना ली है और आपको बनाना भी चाहिए, तो आप इसे अंडरलाइन करके उसमें रख लें, यानी कि अब दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अंडरलाइन किए हुए हिस्सों को जब पढ़ेंगे तो पूरा आर्टिकल आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर पूरा आर्टिकल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मान करके चलिए कि उस आर्टिकल को पढ़ते समय आप होशो हवास में पूरी तरह से नहीं थे, आपने केवल टालने के लिए वो आर्टिकल पढ़ा है कि यार चलो पढ़ना है, सर ने कहा है तो पढ़ लेते हैं। दोस्तों टालने से बात नहीं बनती है, अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को टालेंगे तो सफलता भी आपको टालती रहेगी। आपने उसको ये अधिकार दे दिया है ना कि जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं वैसा ही वो आपके साथ भी करे। तो जब आप रिविजन कर रहे होंगे और सही तरीके से आर्टिकल को पढ़ के रिविजन कर रहे होंगे तो आपको पूरा आर्टिकल याद आ जाएगा और खासकर जो आपने अंडरलाइन किए हुए वो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे। और जब दिमाग में कोई भी बात रिवाइज होती रहती तभी सही मायने में हम एग्जामिनेशन में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और मान करके चलिए कि हम चाहे कितनी भी जानकारी रखते हों इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप आर्टिकल को नहीं रखना चाह रहे हैं तो उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, एक कागज पर नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि यह दूसरा बिंदु शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें आप और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट पैरा तो बहुत ही छोटा सा है, कुछ लाइनों का है, लेकिन उससे ऊपर के पैरा को मैं लूं, जो मैंने आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैंने दैनिक जागरण का आर्टिकल आप लोगों को दिया था, तो उससे ठीक ऊपर का जो पैरा है वो सबसे महत्वपूर्ण पैरा है और उसमें आप पॉइंट्स बना बना करके बाकायदे लिख सकते हैं। अच्छा, पहले पॉइंट्स में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपने ज्ञान और अनुभव और हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे और खासकर विकासशील देशों के साथ शेयर करना चाहेंगे। फिर उन्होंने ये बात कही कि खासकर साउथ ग्लोब, जिसे हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, तो दक्षिण गोलार्ध में जो देश है आप जानते हैं कि ज्यादातर गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी बातें दुनिया में सुनी नहीं जाती हैं, तो हम उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, यानी कि हम उन्हें महत्व देंगे। इसका मतलब है कि भारत किस तरीके से जो छोटे राष्ट्र हैं, जो एक तरीके से उपेक्षित से राष्ट्र कर दिए गए हैं या जो हाशिए पर स्थित राष्ट्र हैं, उनको तरजीह देने की बात कर रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो आपका वक्त भी बच जाएगा और ज्यादा फोकस्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और यदि आपने ऐसी प्रिपरेशन कर ली तो आपको आश्चर्य होगा कि इसका जबरदस्त लाभ आपको प्री एग्जामिनेशन में उस समय मिलेगा जिस पर मैं लगातार बात कर रहा हूं, एलिमिनेशन पर। आपको मालूम है कि मैं एलिमिनेशन पर बात कर रहा हूं, पावर ऑफ एलिमिनेशन पर। पावर ऑफ एलिमिनेशन आपके लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में आप इसे ही मान लें और इस पर आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं अवनी मिश्रा और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।